मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, पहले एक छोटी सी सूचना है, और सूचना यह है कि YouTube पर मेरा अभी एक लेक्चर डाला गया है FEIS पर, बजट के ऊपर। अभी जो 2023-24 का बजट आया था, और उसमें थोड़ा सा हिस्सा इकोनॉमिक जो सर्वे होता है उस पर भी है। मैं चाहूंगा कि यदि आपको थोड़ा भी मुझ पर यकीन है और आप ये मानकर चलते हैं कि मैं कुछ बातें ठीक ठाक तरीके से आपको बता ही लेता हूं, तो आप उस बजट को जरूर सुने। हाँ, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं, उन्हें बकायदे यह अलग से प्रोवाइड किया जाएगा या किया जा चुका होगा, मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर नहीं किया गया हो तो किया जाएगा। और जो हमारे दूसरे स्टूडेंट हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रख करके इसे अब YouTube पर भी उपलब्ध करा दिया गया है। प्लीज आप उसे जरूर देखें। मैं उसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बता भी क्या सकता हूं। बजट की चीजें हैं, बजट के आंकड़े हैं, लेकिन हां, एक बात उसमें जरूर है और वो किसी भी मायने में छोटी बात नहीं है, और वो ये कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से आपको क्या जानना चाहिए और किन बातों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ये आपको जरूर पता लगेगा। देखिए, बजट तो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, फिर क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या याद करेंगे, कितना ही सिर पर लाद कर चलेंगे, तो तैयारी करने में ये बहुत मायने रखता है कि आप जरूरी चीजों को एक्सेप्ट करें और बाकी चीजों को किनारे कर दें। इस क्षमता का होना बहुत जरूरी है, तो प्लीज आप सब उसे जरूर देखें, और देखने के बाद यदि आप अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे अवगत करा सकेंगे ईमेल के जरिए, तो बहुत मैं आभारी रहूंगा। और नो डाउट कि फिर वहां तो आप अपने कमेंट डालते ही रहते हैं, अगर ईमेल ना भेज सके तो वहां भी आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं सऊदी अरब और ईरान ने अभी जो फैसला किया है कि वो दोनों अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को फिर से शुरू करेंगे, इस पर कुछ बातें करूंगा। हो सकता है कि मैं ये बात पूरी न कर सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस पर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। लेकिन इससे पहले जो एक दो दूसरी खबरें हैं, आइए पहले उन पर एक चलती हुई सी निगाह मार लेते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज चैनल्स पर भी आपने सुना होगा, रेडियो न्यूज में भी आपने सुना है, देखा है कि जापान के जो प्रधानमंत्री हैं किशिदा, वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। किशिदा जापान के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री अगर सामान्य तौर पर आए होते तो शायद हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं होती, लेकिन अभी इस दौर में जो आए हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं कह रहा हूं कि इस दौर का क्या मतलब है, जैसे अभी मैंने कहा कि इस दौर, तो इस दौर का क्या मतलब है। दोस्तों, जब मैं इस दौर की बात कहूं इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से और भारत के नजरिए से, तो आपके दिमाग में दो तीन बातें बहुत साफ तौर पर आ जानी चाहिए। सबसे बड़ा हमारा चैलेंज अभी क्या है, चीन, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। और इधर लेफ्ट में अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान, हमारे लिए ये दो तनाव के सबसे बड़े कारण है हमारे सीमांत क्षेत्रों पर, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इस दृष्टि से जापान के प्रधानमंत्री का आना भारत में अभी बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरी बात, अखबारों में आपने पढ़ा कि जो बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद में जो चलने वाली है, उसके लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जो और भी जो धन प्राप्त होना है उसको लेकर के, चलिए वो एक बात हो गई। लेकिन हमारे लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से जो बात मायने रखती है वो ये रखती है कि जापान के प्रधानमंत्री की यह यात्रा चीन के मामले में हमें कितना ताकतवर बना सकेगी, कितनी शक्तिशाली बना सकेगी, ये ज्यादा मायने रखती है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि बकायदे ये बात कही गई है कि जो जापान के प्रधानमंत्री हमारे यहां आए हैं वो बकायदे क्वाड के बारे में बात करेंगे। क्वाड, चार देशों का संगठन, क्वाड। क्वाड के बारे में आप जानते होंगे, मैं यहां उसे लेकर नहीं चलना चाह रहा, नहीं तो बात अनावश्यक रूप से लंबी हो जाएगी। क्वाड, क्वाड का जो एक तरीके से पर्पज है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो यही है कि कैसे चीन के जो मंसूबे हैं, जो महत्वाकांक्षाएं हैं इधर हिंद प्रशांत क्षेत्र में, दक्षिण चीन सागर में अपने आप को फैलाने की, उसे संतुलित किया जाए, तो उस पर वो बात करेंगे। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, कहीं कहीं अखबारों में ये भी लिखा हुआ है पूर्वी क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है उस पर भी वे बात करेंगे। और डेफिनेटली जब आप हिंद प्रशांत क्षेत्र पर बात करेंगे या क्वाड पर बात करेंगे तो बिना चीन के बात हो ही नहीं सकती है। इसके रिजल्ट क्या होंगे वो हमें शायद कल पता लगे, लेकिन उनकी ये यात्रा इस दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस ये मैं आपको स्पेशली बताना चाह रहा था। एक खबर आपने और पढ़ी जो चिंताजनक खबर है और पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक खबर है, और वो ये है कि एक और बैंक जिसे आप बैंक ही कहेंगे, बेसिकली वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, इन्वेस्टमेंट करने वाला जो बैंक है उसका नाम है क्रेडिट स्विस। अखबारों में आज आपने पढ़ा होगा उसकी भी हालत खराब हो गई है। ये तीसरा बैंक है। तो क्या आपको इससे पहले कि दो बैंकों के नाम याद हैं कि किन की हालत खराब हो चुकी है, जिन्होंने पूरी दुनिया में खलबली मचाई? जितने भी अर्थशास्त्री हों, राजनेता हैं, उनके आप कह लीजिए कि मस्तिष्क पर चिंता की लकीरें पैदा कर दी। वो दो बैंकों के नाम आपको याद हैं? अगर याद नहीं है तो दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सामान्य सी चीजें हैं और याद रहनी ही चाहिए, है ना? कोशिश कीजिए, आपको याद आ जाएंगे, मैं बताने नहीं जा रहा हूं, कोशिश कीजिए। दो बैंक पहले फेल हो चुके हैं और ये तीसरा बैंक है क्रेडिट स्विस, राइट? और अभी का बैंक नहीं है। सोच करके देखिए कि 1856 में ये स्थापित बैंक है, कितना पुराना बैंक है, कितना विश्वसनीय बैंक होगा, कितना धनी बैंक होगा, और उसका इस तरीके से फेल हो जाना वास्तव में दुनिया के लिए चिंता का तो विषय है ही। 50,000 लोग सोच के देखे कि इसमें काम करते हैं, 50,000 पूरी दुनिया में इसके ब्रांचेज है, भारत में भी है, भारत में भी ये काम करता है। क्योंकि देखिए करता क्या है कि इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये इन्वेस्ट करता है, लोग इसमें पैसे जमा कर देते हैं या इन्वेस्टर पैसा इसको दे देते हैं और कहते हैं कि हमारा पैसा इन्वेस्ट करो, तो ये शेयर मार्केट में लगा देगा, कुछ और लगा देगा, यहां कर देगा, इस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है आप कह सकते हैं। तो भारत को तो सबसे ज्यादा आपको मालूम है कि विदेशी मुद्रा की जरूरत ही है, तो यहां भी हमारे यहां भी ये काम करता है। तो पता लग गया आपको क्रेडिट स्विस बैंक, ये स्विट्जरलैंड का बैंक है। अखबारों में फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि यूबीएस किसने अब इसे ले लिया है, मर्ज कर लिया है, अपने साथ मिला लिया है। यूबीएस, यूबीएस का फुल फॉर्म है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, यानी कि यह स्विट्जरलैंड का केंद्रीय बैंक है, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसी तरह से जो स्विट्जरलैंड है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह लिया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। तो उसका यह दायित्व बनता है। आप देखते हैं कि हमारे यहां भी जब बैंक फेल होने को होते हैं तो कैसे सरकार हस्तक्षेप करती है और उसे बचाने की कोशिश करती है, क्योंकि बैंक के फेल हो जाने का मतलब तो आप ये कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था के दिल की धड़कन का फेल हो जाना है, रुक जाना है। तो अभी दोस्तों मैं केवल इतनी ही बात आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि भैया ये क्या हो रहा है, ये बैंक क्यों इतने फेल होते चले जा रहे हैं लगातार। बस फिलहाल आपके लिए इतना ही जानना पर्याप्त है। आपको पता लग गया कि क्रेडिट स्विस क्या है, उसके साथ क्या घटना घटी, आपको पता लग गया कि यूबीएस क्या है, वो चर्चा में क्यों आया, तो अभी ये दोनों बैंक मर्ज हो गए हैं, बस ये मान करके चलिए, या यूं कह लीजिए कि यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को टेक ओवर कर लिया है। तो कम से कम अब ये बच जाएगा, ये बैंक सुरक्षित हो जाएगा, अब सरकार चाहे जो भी करे। और यहां तक कि जब ये क्रेडिट स्विस बैंक फेल हुआ तो बकायदे इंग्लैंड ने, यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों ने, कनाडा ने अपने अपने स्टेटमेंट जारी किए, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है। लेकिन ये घटना क्या रूप लेगी इस पर डिपेंड करेगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए किस तरीके से इसकी तैयारी की जानी चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और जैसा कि मैंने कहा कि कुछ दिनों पहले ही सऊदी अरबिया और ईरान ने यह फैसला किया है कि दोनों अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को फिर से शुरू करेंगे। लगभग एक दशक पहले एक घटना घटित हुई थी जिसके बाद से दोनों ने अपने राजनयिक संबंधों को तोड़ लिया था, तो एक अच्छी बात है। इसे मैं थोड़ा सा विस्तार के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा क्योंकि एग्जामिनेशन की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें चीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि इन दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन फिर से शुरू हो जाएं। आप देख रहे हैं कि चीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और बहुत बड़ा रोल क्या प्ले किया, यूं कह लीजिए कि ये चीन के कारण ही संभव हो सका है। तो चीन की इमेज तो पूरी दुनिया में बढ़ गई कि दो शत्रुओं के बीच में उसने मित्रता स्थापित कर दी। और चीन के साथ हमारे कैसे संबंध है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये दोनों के दोनों जो देश हैं ये मध्य पूर्व के देश हैं, इनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं ये भी आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप जान जाएंगे। तो ऐसे में अगर चीन वहां घुसपैठ कर रहा है तो हमारे लिए थोड़ा चिंता का कारण तो है, लेकिन कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आइए हम अगर सही तैयारी करना चाहते हैं तो पहले इन ये जो दोनों देश हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान ले कि क्या है ये, और मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूं उसका संबंध केवल इनके रिलेशंस को ही लेकर है, बस उससे आगे और कुछ भी नहीं। सऊदी अरबिया पूरे के पूरे मध्य पूर्व का, या यूं कह लीजिए कि इस्लामिक जो राष्ट्र है उनका बहुत ही प्रमुख देश है। क्यों प्रमुख देश है? कुछ कारण है। हजरत मोहम्मद साहब का जो जन्म राष्ट्र है वो सऊदी अरबिया है, आप जानते हैं, नहीं जानते तो जानना चाहिए। तो ये सऊदी अरबिया में ही है, तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम को मानने वालों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण राष्ट्र है सऊदी अरबिया। ठीक है, नो डाउट कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, रियाद इसकी राजधानी है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एडिटोरियल कमेंट में हो सकता है कि सऊदी अरबिया न लिख करके रियाद शब्द आपको पढ़ने को मिल जाए, तो ये मत समझिएगा कि ये रियाद क्या आ गया, ये यहां की राजधानी का नाम है रियाद। आबादी लगभग 3 करोड़ की ही है, बहुत ज्यादा आबादी तो नहीं है लेकिन ठीक है, वहां के देश कम आबादी वाले ही है, तो 3 करोड़ की आबादी आप पर्याप्त मान सकते हैं। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है अभी स्पेशली। पहला, ये विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक राष्ट्रों में है, तेल यहां खूब है, पेट्रोलियम पदार्थ, तेल इसकी बहुत बड़ी ताकत है। दूसरे, यहां जो लोग हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं, मतलब शिया सुन्नी दो प्रमुख वर्ग माने जाते हैं मुस्लिमों के, तो यहां के जो लोग हैं वो सुन्नी मुसलमान हैं। सुन्नी मुसलमान, खासकर सुन्नी और शिया में जो थोड़ा सा फर्क है, आप कह सकते हैं कि जो सुन्नी है वो जो कुरान है या यूं कह लीजिए कि इस्लाम धर्म की जो मान्यताएं हैं उनका बहुत ही कट्टरता से पालन करते हैं, बहुत दृढ़ता से पालन करते हैं, दृढ़ता शब्द ज्यादा सही होगा, और जो शिया हैं वो थोड़े से उदार किस्म के हैं, थोड़े से लिबरल हैं, मानते वो भी इस्लामिक धर्म को ही हैं लेकिन थोड़े से लिबरल किस्म के हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी है सऊदी अरबिया के बारे में, अब बाकी पर बात हम लोग कल करेंगे। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर के क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दीपू कुमार भगवतीपुर बिहार से, प्रिया झुंझुनवाला पटना से, आदित्य सोनी रायपुर से, और मुस्कान सोनकर, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।